स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब लोगों का नरसिम्हपल्ली इस क्षेत्र में स्वागत है आज के इस पवित्र दिन पे। गुरुजनों की और आचार्य गुरुजनों की असीम कृपा से हम इस स्थान पर पहुंच सके हैं। इतना दिव्य स्थान है, देखिए बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष यहाँ पर हैं। धाम के वृक्षों के बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि धाम में जो वृक्ष होते हैं उनको कल्प वृक्ष कहा गया है, कल्प वृक्ष या कल्पद्रुम। और अनेक युगों के ऋषि मुनि जो होते हैं वो धाम में कई बार वृक्ष बनकर जन्म लेते हैं और भगवान की जो लीलाएं हैं उसका अवलोकन और उसका लाभ लेने का प्रयास करते हैं। वृक्षों के अंदर एक विशेष शक्ति होती है, वृक्ष जो होते हैं वो उस जगह की जो लहरें होती हैं, भावना वाइब्रेशन, उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये वृक्षों के अंदर विशेष शक्ति है, भगवान ने दी है। और जो हमारे जैसे भक्त इनके सन्निध्य में आते हैं तो उस दिव्य चेतना का लाभ वो हम सबको देते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव ने हमको एक बार बताया था कि आप जब यात्रा लेके जाते हो तो जितना हो सके उतना वृक्ष के नीचे बैठकर कथा किया करो, ताकि वृक्ष की जो शक्ति है, दिव्य शक्ति, उसका लाभ भी कथा में सब लोगों को मिल सकता है। इसलिए हमेशा हम कोशिश करते हैं कि लोगों को वृक्षों के नीचे बिठाते हैं। थोड़ा आपको कष्ट देते हैं और माफी चाहता हूँ लेकिन थोड़ा सा कष्ट लेने से बहुत लाभ मिलता होगा तो वो कष्ट लेना चाहिए। तो ये जो वृक्ष हैं, ये धाम के वृक्ष हैं, ये साधारण वृक्ष नहीं हैं। बहुत युगों के संत ऋषि मुनि इनके रूप में यहाँ पर निवास करते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से भगवान की नित्य चलने वाली लीलाओं का दर्शन करते रहते हैं। इसलिए हम लोगों को बिना भूले सब जगह पर जितना हो सके उतना इन वृक्षों को आलिंगन देना चाहिए। कल्प वृक्ष का और भी एक अर्थ होता है कि उनके पास खड़े होकर आप जो भी भगवान के विषय में इच्छा करेंगे वो उसको पूर्ण कर देते हैं। और एक बात बताना हम चाहेंगे कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, जैसे अभी यहाँ पर हम आए हैं नरसिंह भगवान का दर्शन करने के लिए, बीच में गए थे हरिहर क्षेत्र में, रोज हम लोग मायापुर में रह रहे हैं, वहाँ पर राधा माधव पंचतत्व चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं। हाँ, कृपा करके इस दर्शन में दर्शन करते हुए कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं मांगना जो समाप्त तो होने वाली है। आद्यंतु वंतु कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। भगवान गीता में बताते हैं कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं, जिस वस्तु की शुरुआत होती है और जिसका अंत होता है, ऐसी वस्तुओं में रुचि नहीं लगाते, मन नहीं लगाते उसके अंदर। न तेषु रमते, मतलब उसमें आनंद लेते नहीं वो। रमते बुधा, बुधा मतलब बुद्धिमान। तो हमें यहाँ पर आकर केवल एक ही मांग करना, ऐसा है ना कि मांगने की भी बहुत तरह अलग अलग तरीका होता है। तमोगुण में कुछ मांग सकते हैं, रजोगुण में कुछ मांग सकते हैं, सत्वगुण में भी मांग सकते हैं, लेकिन एक होता है दिव्य गुण में प्रार्थना करना। भक्तों की प्रार्थना कैसी होती है, केवल आपकी सेवा में मुझे प्रगति मिले, आपकी सेवा में मैं आगे बढ़ूं, चाहे मैं गरीब रहूं, धनवान रहूं, आरोग्य संपन्न रहूं, बीमार रहूं, किसी भी अवस्था में रहूं, मेरी एक ही इच्छा है कि आपके चरणों में मैं हमेशा लीन रहूं, आपकी सेवा करते रहूं। मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहैतुकी त्वयि। जितने जन्मों में अगर लेना पड़ेगा मुझे, शायद आपकी इच्छा हो तो मोक्ष दे सकते हो, लेकिन मोक्ष की मैं कामना नहीं करता हूं। मैं केवल कामना करता हूं कि अगर आपको जहां भी रखना है, जहीं भी आप रखेंगे वहां पर रखने को तैयार हैं, लेकिन जहां पर रखेंगे वहां पर आपकी सेवा में रखिए। मम जन्मनी जन्मनी, अनंत जन्म तक भवतात् भक्तिर अहैतुकी त्वयि। आपकी अहैतुकी मतलब बिना किसी स्वार्थी हेतु की जो भक्ति है वो मुझे हमको मुझे हमेशा मिलती रहे, यही हमारी एकमात्र इच्छा है। तो आपको मैं विनती करूंगा कि भगवान के पास जाकर कुछ थोड़ा मोटा धन मत मांगना। हाँ, मेरी बेटी की शादी हो जाए अच्छे लड़के से मत मांगना। हाँ, मेरा कुछ लोन क्लियर हो जाए मत मांगना। मेरे बेटे को एसएससी में ट्वेल्थ में अच्छे मार्क मिले मत मांगना, वो सब कर्मों के अनुसार होते रहता है, समय के अनुसार भाग्य के अनुसार सबको सुख और दुख मिलते रहता है, उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। दुर्गा देवी भी ऑल्टर नहीं कर सकती है, शिवजी भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता उसको, लेकिन भक्ति को ऑल्टर कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा होगी तो भक्ति को आप बढ़ा सकते हो और भक्तों का अपराध करके उसको नाश भी कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। लेकिन कर्मों का नाश करना है तो केवल भगवान कृष्ण की शरण लेना पड़ेगा। इसलिए भगवान से हम लोग कभी भी ऐसी मांग नहीं करते हैं, जो मांग करने के बाद जो मिलेगा वो काल के प्रभाव से कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगा, ऐसी वस्तुओं को हम लोग भगवान से नहीं मांगते। उनसे वो मांगो जो वो देना चाहते हैं, तो देने के लिए वो बैठे हैं। हाँ, राजा के पास जाएंगे, बोलेंगे भूख लग रही है, दो रोटी खिला दो। राजा बोलेगा तुम्हारे जीवन भर की रोटी का इंतजाम कर सकता हूं मैं, तुम दो रोटी की मांग कर रहे हो। तो इसलिए भगवान तो सर्वेश्वर, सर्व सर्व ईश्वर है, वो सब ईश्वरों के ईश्वर है, वो उनके पास उनके चरणों की भक्ति मांगो, ताकि वो दो रोटी का जो भूख है वो भूखी समाप्त हो जाए, शरीर ना रहे, उनके चरणों में दिव्य देह प्राप्त हो जाए, उनके लोक में रहे, उनकी चिरंतन सेवा करते रहे, जहां पर कल्प वृक्ष होते हैं, जहां पर हर कण चिंतामणि होता है, यहाँ पर भगवान अपने भक्तों के साथ में लीला करते रहते हैं, ऐसे धाम में निवास मिलेगा, धाम में सेवा मिलेगी, तो और क्या चाहिए भक्त को। इसलिए मांगने की भी एक साइंस होता है। हाँ, हर जगह हर कुछ मांगने से कुछ लाभ नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। मांगने के लिए संतों के चरणों में बैठ के सीखना चाहिए, मांगने के अंदर होती है, पीएचडी होती है। हाँ, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी भी मांगने के अंदर होती है, पीएचडी इन भिक्षा। बट वो भिक्षा भगवान के चरणों की भिक्षा है, इसकी हम मांग करते हैं। इसलिए आपको और भी मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने वो सब लेटर में लिखा था आपके लिए कि आप दीप दान इस महीने में करना है आपको। हाँ, थोड़ा सुबह दो बार याद करने को भूल गया मैं, लेकिन आपको आपके साथ में दीपक का किट आपके पास होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो हमारे पास कोई 50 सेट उन्होंने बना के लाए हैं, वो आप लीजिए, तो नरसिंह भगवान जहाँ पर भी आगे जहाँ पर भी दर्शन होगा वहाँ भगवान को दीप दान कीजिए। ये कार्तिक महीना जो है ये विशेष महीना है भगवान का, बहुत भगवान को प्रिय है, राधा रानी को बहुत प्रिय है। इसमें भगवान को यशोदा मैया ने डोरी से उनके पेट को बांधा था, उखल से भगवान ने माखन चुराया था और उनको दंड के रूप में उखल से बांध दिया था, फिर उन्होंने दो पेड़ को गिराकर दो देवताओं को मुक्त कर दिया था। इसी लीला के ऊपर जो उनका नाम गिरा है दामोदर, और इसी पर इस महीने का नाम भी है दामोदर मास, कार्तिक मास का और एक नाम है दामोदर मास। और इसमें कृष्ण भगवान के सभी चटपटी बहुत मधुर मधुर मीठी मीठी बाल लीलाएं इस महीने में संपन्न हुई है। तो इस महीने में दीप दान करने का भगवान कृष्ण और विष्णु को बड़ा अमूल्य महत्व है इसके अंदर। एक एक दीप के सामने कोई ऐसा पाप नहीं होता है जो टिक सकता है, कोई भी जघन्य पाप ऐसा नहीं है जो कार्तिक के एक दीप के सामने टिक सकेगा। और केवल न केवल वो पापों को नष्ट करता है, लेकिन वो दीप जो है आपके हृदय में भक्ति का दीपक जलाएगा, इतनी शक्ति है उसके अंदर। इसलिए कार्तिक में आप देखेंगे, कल कुछ लोग लेट आए, उनको कल नहीं मिला, आज शाम को हम पहुंचेंगे तो आप देखेंगे इतने भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से, भक्ति भाव से संपूर्ण वातावरण में गीत गाते हुए दामोदर अष्टकम सब लोग भगवान को दीप दान करते हैं। तो आज आपको सबको इकट्ठा शाम को 7 बजे से 8 बजे मिलकर एक मौका मिलेगा, आप देखेंगे भगवान को दीपदान कैसे होता है और कैसे होना चाहिए। तो उसमें जो अष्टक है उसका नाम है दामोदर अष्टक, उसके लेख उसके कवि हैं सत्यव्रत मुनि। वो कहते हैं मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए, मुझे आपके धाम का वास भी नहीं चाहिए, मुझे ना धन चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना सुंदर स्त्री चाहिए, मुझे केवल आपकी बाल लीलाएं होती रहे, उनका दर्शन होता रहे और मैं आपकी सेवा करते रहूं, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। न चाण्यम ऋणे हम वरेषादपि, और कुछ अपेक्षा नहीं करता हूं। तो हमें भी ऐसा निरपेक्ष होकर भगवान से केवल उनकी सेवा मांगनी चाहिए। मांगने लायक केवल एक ही वस्तु होती है, वो है सेवा, और बाकी सब कुछ तो हमारे कर्मों के अनुसार तो आते रहता है, जाते रहता है और आते रहता है। इसलिए मांगना है तो भक्ति मांगो, भगवान के चरणों की सेवा मांगो। श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद में एक कथा आती है, उसमें भगवान कृष्ण जो है वो राजसूय यज्ञ में, युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध कर देते हैं। शिशुपाल कि सब अपराध भगवान ने उसके जन्म के समय उसकी माता को वरदान दिया था कि मैं माफ कर दूंगा। जन्म से ही भगवान की निंदा करते करते ही पैदा हो गए। तो माता को बड़ा कष्ट हुआ। माता ने कहा था कि, माता को ये बताया गया था कि इस ये जिसकी गोद में जाएगा उसको तीन तीन नेत्र थे और शायद तीन पैर थे और तीन हाथ थे। बड़ा अजीब सा जन्म हुआ उसका, बहुत भयंकर। तो बहुत दुखी माता हुई उसकी। वो भी कुंती की चचेरी बहन थी, भगवान का भी चचेरा भाई है वो। तो उनको बताया गया कि जिसकी गोद में जाएगा और जिसकी गोद में उसकी ये वो एक्स्ट्रा आँख, एक्स्ट्रा पैर, एक्स्ट्रा हाथ गिर जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा, उसी के हाथ से आगे उसका वध होगा। तो सबके गोद में दिया उसको। एंड में कृष्ण का नंबर आया। कृष्ण के गोद में जाते ही सारे एक्स्ट्रा पाव सब निकल गया उसका, नॉर्मल हो गया वो। लेकिन नॉर्मल नहीं हुआ, डर लगा उनको बाद में। तो माता ने कहा कि मैं विनती करती हूँ कि इसको आप सौ अपराध माफ कर देना, तब तक मैं उसको रोक लूँगी अपराध करने से भी। लेकिन वो इतना भयंकर अपराधी था कि वो एकदम फुल फिफ्थ गियर में हमेशा भगवान के ऊपर निंदा करता था। उसके भागवत में पढ़ेंगे ना आप, इतना भयंकर गाली भगवान को देता था। तो राजसूय में उसने भगवान को गाली देना शुरू कर दिया। वो सब भीम वगैरह गदा लेके उठ गए, अर्जुन दांडू देके उठ गया। भगवान ने कहा शांति रखो, मैं गिनती कर रहा हूँ, आई एम काउंटिंग। जैसे सौ हो गए भगवान ने चक्र छोड़ दिया, उसको सर उसका कट गया। लेकिन एक अद्भुत बात हो गई, उसके सर कटने के बाद, उसका देहांत होने के बाद में उसके शरीर से जो ज्योत निकली आत्मा की, वो कृष्ण भगवान के शरीर में विलीन हो गई। तो ये कथा चल रही थी तो परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव जी को, अरे ये ऐसे कैसे हुआ, इतना बड़ा पापी उसकी आत्मा भी भगवान के अंदर लीन हो गई, सायुज्य मुक्ति हो गई उसकी। तुमने कहा इसकी लंबी कहानी है। वो ये है कि एक बार चार कुमार थे, बड़े ऋषि थे वो, अपने योग बल से उन्होंने अपने शरीर को केवल चार साल का बना के रखा था। चार साल का बालक अगर नंगा भी घूमेगा तो कोई उसके इतराज नहीं करेगा ना। और उनको अपने शरीर के अंदर काम वासना को निर्माण करना ही नहीं था, योग बल से उन्होंने अपने शरीर को केवल चार साल का रखा था। और ऐसे नग्न अवस्था में, बाल्यावस्था में सब जगह घूमते थे वो, वैकुंठ में, स्वर्ग लोकों में, कहीं भी जहाँ उनका मन लगे वहाँ घूमते। एक बार वैकुंठ में गए, अभी वैकुंठ जैसी जगह पर चार नंगे बालक आ गए तो फिर उनको रोका गया। जय विजय नाम के उधर रक्षक थे, उन्होंने कहा बच्चों को यहाँ एंट्री नहीं है। वैसे लाखों साल की उनकी उम्र थी लेकिन थे इसने से। तो जैसे उन्होंने ऐसा रोक दिया उनको, तो वो शाप दे दिया उन्होंने कि पृथ्वी पर जाकर जन्म लेना होगा। तो ये सब हलचल सुनी तो विष्णु जी स्वयं वैकुंठ से बाहर आ गए गेट पर। क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ, इन्होंने हमको रोका, हमने उनको शाप दे दिया। तो अभी प्रॉब्लम हो गया, अभी क्या करना है। बोले सात बार जाना होगा आपको। बोले सात बार बहुत लंबा होता है, कुछ डिस्काउंट दे दो। दिवाली का मौसम है, डिस्काउंट दे दो। तो उन्होंने कहा सात बार के बदले में तीन बार राक्षस होकर आना पड़ेगा। बोले चलेगा, लेकिन पृथ्वी लोक में जितना कम समय उतना अच्छा। अरे उनको इतनी तकलीफ, पृथ्वी लोक में आने के लिए तकलीफ है, हम लोग तो आराम से जी रहे हैं यहाँ पर। सब लोग यहाँ पर कितना कष्ट है, इतनी पीड़ा है, इतना मतभेद है, इतना संकट है, इतना कलह है, इतना दंभ है, इतना गर्व है, क्या क्या दोष है। कलह दोषे निधिर राजन, लेकिन अस्ति एको महान गुण, हाँ भगवान का नाम है इसके अंदर। कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। इतने दोष के सागर में उनको आने में इतना कष्ट है, हमको तो आराम से हम जी रहे हैं यहाँ पर। तो फिर पहले वो हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु बने, भयंकर, इतने भयंकर थे कि वो हिरण्याक्ष ने तो पृथ्वी को लात मार दिया गेंद की तरह। इतनी बड़ी पृथ्वी, लात मार के गेंद को सागर में फेंक दिया, सब पृथ्वी सागर के अंदर। सब लोग हाहाकार हो गया, सब देवता लोग गए, अरे तो पृथ्वी को अपने कक्षा से पदच्युत कर दिया उसने गेंद की तरह। देवता लोग गए ब्रह्मा जी को लेकर, ब्रह्मा जी गए विष्णु के पास, विष्णु ने कहा निश्चिंत रहो मैं करता हूँ इसका इलाज। ऐसे बोलते बोलते ही ब्रह्मा जी के नाक से कोई एक जीव निकला बाहर। आश्चर्य हो गया, अरे क्या हो रहा है, एक जीव निकला छोटा सा, क्या है समझ में नहीं आ रहा था। अचानक उनकी आंखों के सामने इतना विशाल रूप धारण किया, इतना विशाल रूप, सारा अवकाश व्याप्त कर लिया। और वो क्या था, वराह रूप था भगवान का। भगवान एक वराह के रूप में, उसको इंग्लिश में बोर कहते हैं, बोर, वाइल्ड बोर। सुंदर भगवान ने वराह रूप में दर्शन दिया, जो अलंकार से सुशोभित थे। फिर अवकाश में उनका और हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ, सारे देवता लोग कांप कांप कर डरते हुए उस युद्ध को देख रहे थे, पता नहीं कौन जीतेगा, भगवान जीतेंगे कि हिरण्याक्ष जीतेगा, इतना भयंकर युद्ध हो रहा था। आखिर भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। और फिर उसके पहले भगवान ने वराह रूप क्यों लिया था? क्योंकि गंदे पानी में केवल वराह यानी कि सुअर ही प्रवेश कर सकता है, लेकिन भगवान जब गंदे प्राणी का भी जन्म लेते हैं तो बहुत सुंदर होते हैं। हाँ, ऐसे कहा गया जब वराह रूप में आए तो कई विश्व की कन्याएं जो थी उनसे रूप को देखकर मोहित हो गई और उनके साथ में संग करना चाहा उन्होंने। तो वराहदेव ने कहा कि अभी नहीं, जब मैं कृष्ण भगवान बनकर आऊंगा वृंदावन में तो आप गोपियां बनकर आना, तो आपको मैं मौका दूंगा मेरे साथ में संग करने का। मतलब आप समझते होंगे वराह रूप में कैसे भगवान दिखते होंगे, हाँ, लेकिन भगवान जब वराह रूप बन के भी आते हैं तो बहुत ही अति सुंदर दिखाई पड़ते हैं। तो छलांग लगाई उन्होंने, हाँ क्या बोलते हैं ना, डाइव लगाया सूर मारला पाण्यात, एंड देन उन्होंने पृथ्वी को अपने नाक के ऊपर जो दो सिंह थे उनके, टस्क कहते हैं उसको, उस पर पृथ्वी को धारण किया और वो जल के ऊपर आए नीचे से और फिर आगे आगे ऊपर ऊपर गए और पृथ्वी को अपनी कक्षा में पुनः स्थापित कर दिया उन्होंने। जब ये हो रहा था तो हिरण्याक्ष वहां से आया, किसकी ऐसी हिम्मत जिसको मैंने लात मार के फेंक दिया है उसको दोबारा अपनी जगह पर रखें। तो भगवान ने कुछ उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया, पहले पृथ्वी को जगह पर रख दिया, जिस काम के लिए आए पहले उसको कर दिया, उन्होंने अपना ज्यादा गुस्सा नहीं दिखाया। फिर जब उन्होंने आह्वान किया, चैलेंज दिया, तब उनका युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष का वध हुआ। उसका छोटा भाई था हिरण्यकशिपु, उनकी एक जुड़वा भाई थे। तो हिरण्यकशिपु बड़े गुस्सा हुए कि मेरे भाई का विष्णु ने वध कर दिया। तो पहले उसकी पत्नी का सांत्वना किया उसने, वो जाके तपस्या किया 1000 साल तक, पृथ्वी के नहीं स्वर्गीय 1 साल, 1000 साल मतलब यहाँ का 6 महीना वहाँ का 1 दिन होता है स्वर्गीय लोगों का, और यहाँ का 1 साल ब्रह्मा लोक में 1 क्षण होता है। ऐसे ऐसे समय का गणित जो अलग अलग होता है। तो ऐसे पृथ्वी के 6 महीने वाले 1 साल, 6 महीने के 1 दिन, ऐसे 1000 साल हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया। आज तक पूरे इतिहास में जितना व्यासदेव ने लिखा है उस सारे इतिहास में ऐसा कोई तुलना नहीं है, जितना तपस्या, भयंकर घोर तपस्या हिरण्यकशिपु ने किया उसकी कोई तुलना नहीं है। सेकेंड नंबर पे है सिल्वर मेडल, कौन है? ध्रुव महाराज। लेकिन 2 नंबर पे है वो, 1 नंबर पे हिरण्यकशिपु है। लेकिन ऐसी तपस्या जो भगवान के विरुद्ध भावना में होती है, प्रतिकूल भावना में होती है, वो हितकारी नहीं होती है। तपस्या क्या, कैसे? एक अंगूठे पे खड़े रहकर, दाहिने पैर के एक अंगूठे में खड़े रहकर, दोनों हाथ आकाश में, ऐसे वो खड़ा रहा निस्तब्ध होकर। उसके शरीर पर चींटियों का घर बना, सब चींटियों ने उसका मांस वास सब खा लिया, केवल अस्थि पंजर बच गया, केवल जीव उसके अस्थि पंजर में घूम रहा था। इतनी भयंकर तपस्या किया कि उसके आंख से, उसके सर से अग्नि निकला और वो अग्नि को, अग्नि इतना भयंकर था कि सारे स्वर्ग लोगों की उसकी आंच पहुंच गई और जलने लगे वो वहां पर। जैसे हम लोगों को अग्नि के पास खड़े होने से जो अनुभव होता है ना, वो सब लोगों को पूरे स्वर्गों में होने लगा। तो सब लोग भाग भाग के फिर विष्णु के पास गए। फिर विष्णु ने कहा मैं आऊंगा, मैं वेट कर रहा हूं इसका अत्याचार कब खत्म होता है। तो ब्रह्मा जी को पहले भेज दिया, ब्रह्मा जी गए, बोले तू इतनी तपस्या क्यों कर रहा है? बोले मुझे अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा सॉरी रॉन्ग नंबर। बोले मुझे अमर करने की शक्ति होती तो मैं खुद पहले अमर बनता फिर आपको बनाता, मेरे पास अमर होने की शक्ति नहीं है। मुझे भी, मेरा भी जन्म हुआ है इसी समय, मेरा भी कालावधि है 3 trillion 11 billion years, इसके बाद में मेरा भी मृत्यु होना है, और कुछ मांगो। तो उसको लगा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, तो मैंने उसने एक बड़ा लिस्ट बना दिया कैसे कैसे मृत्यु हो सकती है। शस्त्र से हो सकती है, अस्त्र से हो सकती है, हाँ जल में हो सकती है, थल में हो सकती है, आकाश में हो सकती है, जानवर के द्वारा हो सकती है, मनुष्य के द्वारा हो सकती है, और घर के अंदर हो सकती है, घर के बाहर हो सकती है, दिन में हो सकती है, शाम को, रात को हो सकती है, जितना जितना मुमकिन था सब लिख दिया उसने, मतलब पूरा एग्जॉस्टिव लिस्ट बना दिया। अभी इसके आगे कोई और मृत्यु का कोई स्कोप नहीं है। और ब्रह्मा जी ने कहा थैंक यू, तथास्तु, हरि बोल। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा हो गया, इतने में पट गया। क्योंकि वो इतनी भयंकर तपस्या की थी कि ब्रह्मा जी को आना पड़ा जबरदस्ती, प्रसन्न होकर नहीं आए वो, बोले और कुछ करेगा तो पूरा सारा स्वर्ग लोग, ब्रह्मा लोग सब व्याप्त कर लेगा ये, इसलिए उसको वहां पर रोकने के लिए आए वो। और उसके बाद में उसका हाहाकार मच गया सब जगह पे, ऐसा नहीं कि वरदान प्राप्त किया तो शांत हो गया वो, नहीं, उसका उत्पात बढ़ गया, सभी देवताओं को अपने पद से उसने हटा दिया, भगा दिया उनको पूरा जान के भय से, और इंद्रस्थान पद पदाक्रांत कर लिया। सब ब्रह्मा लोग छोड़कर सभी लोगों को पदाक्रांत कर लिया। देवता लोग उसके घर में, अरे क्या वर्णन किया भागवत में, इंद्र आदि देवता को उसने पानी भरने के लिए और जमीन साफ करने के लिए और पानी देने के लिए और भोजन बनाने के लिए ऐसा काम में लगाया था उन्होंने। खास करके उनका गर्व हरण करने के लिए, उसका अपमान करने के लिए बड़े बड़े देवताओं को ऐसा नौकर बना दिया था घर पे, पानी भरने के लिए और पोछने के लिए और मसाज करने के लिए। इतना उसका पोजिशन था कि उसकी भवें जब उठता था ऊपर, भवें जब ऊपर उठती थी तो सारे लोग कांपते थे अपने लोकों में बैठकर, पता नहीं क्या कर लेगा ये, इतनी शक्ति थी उसके अंदर। क्योंकि निर्भय हो गया ना, देवताओं से मृत्यु नहीं, मनुष्य से नहीं, प्राणी से नहीं, किसी से मृत्यु नहीं, जो आपने निर्माण किया है ऐसे योनि में से किसी योनि से द्वारा मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है, तो डर किसका है फिर? इतना अहंकार अलंकार मच गया उसका। तो फिर जब उसने प्रहलाद का अपराध किया, प्रहलाद को कष्ट दिया, बड़ी लंबी कथा है, बहुत कष्ट दिया, तब भगवान ने फिर प्रहलाद ने कहा कि प्रहलाद को तो कुछ नहीं कर पाए वो देवता, जिसको देख कर कांपते थे देवता जिसको देखकर कांपते थे वो व्यक्ति एक 5 साल के बालक का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। सारे शस्त्र अस्त्र राक्षस और उनके जो सिद्धियां, उनके मंत्र तंत्र, जलाना, विष देना, हाथी के पांव तले देना, पहाड़ से फेंक देना, क्या क्या कर रहा जिससे मुक्ति हो सकती है, वो सब कुछ तरीके अपना लिए। उसको सोचा कि मेरे पास तो इतने सारे वरदान है इसलिए मैं सेफ हूं, ये बच्चे के पास कुछ वरदान नहीं है, और मैं सारे तरीके अपना लिए जिसके वजह से मैंने वरदान मांग के लिया कि इससे मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, वो सारे तरीकों का वरदान मैंने मांग लिया है, वो सारे तरीके इस पर मैंने लगा दिए, फिर भी ये कुछ नहीं हो सकता है, हंस रहा है। फिर पूछते हैं तुम्हारे अंदर शक्ति कहाँ से आ रही है? बोले जहां से आपको आ रही है वहां से मेरे को आ रही है, जो आपका सोर्स है वही मेरा सोर्स है। कौन है वो सोर्स, कौन होगा आपकी शक्ति का? कहते हैं विष्णु। विष्णु मेरा शत्रु है, उसका नाम मत लो। बोले ये सच है, जो शक्ति आपको मिल रही है उसी जगह शक्ति मुझे भी मिल रही है, आप उनका पूजन करो, आप बुद्धिमानी का कार्य नहीं कर रहे हो। इतने बड़े राजा को जिससे देवता भी कांपते हैं, उसे 5 साल का उसका खुद का पुत्र उपदेश कर रहा है, पापा आप वृंदावन में जाओ, सब कुछ त्याग करके भगवान के भक्त बनो, उसी में आपका कल्याण है। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, आपकी अंतिम गति विष्णु है, इस आपके स्वार्थ को आप पहचानते नहीं हो, इसलिए आप इस सारे भोग में लिप्त हो रहे हो, इसलिए आप सब कुछ छोड़ के वृंदावन में जाओ। फिर बोलते श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्वर्णम पाद सेवनम आत्मनिवेदनम, वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये जीवन का तरीका है, बस करो तुम्हारी बकवास। एक एक प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसका यही उत्तर देते जा रहे हैं। तो उसने कहा कि अभी मैं स्वयं अब तक दूसरे के हाथों से तोरा मृत्यु करने का प्रयास कर रहा था, अभी मैं स्वयं अपने हाथ से मेरे दिव्य खड्ग को उठाकर तुम्हारा वध करूंगा, देखता हूं तुम्हारा विष्णु कैसे तुमको बचाता है। तलवार जब उठाया तो ऐसा वर्णन दिया है कि ऐसे मानो कोई पहाड़ जैसा आदमी हो, उसके हाथ में ऐसी पहाड़ जैसी एक तलवार हो और उसने उठा ली हो तो कितना भयंकर दृश्य होगा। हमारी बेटी एक बार छोटी सी थी 5 साल की, तो प्रहलाद का रोल कर रही थी वो, हाँ, और कितने लोग डॉक्टर शेट्टी को जानते हैं, आदिकेश्वर प्रभु को। इतनी सी हमारी बेटी, इतने बड़े आदिकेश्वर प्रभु, 6 फीट 2 इंच, उसके ऊपर 4 फीट के उनके हाथ और उसके ऊपर 4 फीट की तलवार। मेरी मम्मी जो थी वो स्टेज ऑडियंस में फर्स्ट सीट पर बैठी थी, फर्स्ट रो में सामने बैठी थी। तो जब हमारी बेटी आई और बोली हिरण्यकश्यप को कि आप भगवान विष्णु का क्यों नहीं भजन करते हो, तो आदिकेश्वर प्रभु बोलते हैं देखता हूं कैसे विष्णु बचाता है, ऐसे करके उठाया तो मेरी माँ डर गई एकदम सामने से, अरे बाप रे। तो ये तो नाटक था, छोटी सी इतनी मेरी बेटी और ये 6 फीट के दुनिया के कलियुग के हिरण्यकश्यप, वो तो इतना भयंकर था, उसका पहाड़ से भी ऊंचा शरीर था, फिर भी ये बच्चा डरा नहीं। जो भगवान की शरण लेता है वो निर्भय हो जाता है, वो मृत्यु से भी डरता नहीं है। तो भगवान के चरणों का सहारा लेता है तब पाद पंक तब कहते अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवान बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित दूली सदृशम विचिंतया। जो आपके चरणों में शरण लेता है वो सभी भयों से मुक्त हो जाता है, सब भय उससे भाग जाते हैं। साक्षात जो मूर्तिमान भय है वो भी इस व्यक्ति से दूर भाग जाता है। तो ऐसे जो अमरता का ऑलमोस्ट अमरता का वरदान प्राप्त कर चुका है, ऐसा व्यक्ति मारने को स्वयं अपने आ रहा है। कितना डरना चाहिए, लेकिन इतना सा बालक नहीं डर रहा है। हमारे घर पे हमारे जब हमने दवाखाना खरीदा ना भक्तिवंत हॉस्पिटल के लिए, तो एक फ्लैट लिया हमने वहाँ पर, उसके मालिक को एक बार मिलने गए थे। तो उसके बाद एक कुत्ते का पिल्ला था, हमने डील किया और हम घर से बाहर निकल रहे थे तो कुत्ते का पिल्ला भी साथ साथ में आया। और हम लोग अपने कंपाउंड में थे और बाहर से चार पांच बड़े बड़े कुत्ते जा रहे थे और बहुत जोर से भौंक रहे थे। तो एक कुत्ते का पिल्ला ने क्या किया, अपने मालिक के दो पांव के बीच में आके उस बड़े बड़े कुत्तों पर भौंकने लगा। क्या साइकोलॉजी इसके अंदर है कि मैंने ऐसे व्यक्ति का सहारा लिया है जो सामने वाले कुत्तों से ज्यादा बलशाली है, और उसके चरणों के बीच में जाकर इतना सा पिल्ला इतने बड़े बड़े कुत्ते पर जोर जोर से भौंक रहे हैं एकदम निर्भयता से, और वो भी जानते हैं कि जिसका सहारा लिया है उसको हम डिफीट नहीं कर सकते, इसलिए उधर से भौंक रहे हैं, आगे नहीं आ रहे। तो यहाँ से इतना बच्चा जोर जोर से भौंक रहा है। हमको भी ये प्रिंसेस ये जो उदाहरण है इसे सीखना चाहिए। हम चाहे कमजोर होंगे लेकिन जिसका सहारा हम लेने जा रहे हैं वो कमजोर नहीं है, आपकी सारी कमजोरियां पूरी कर सकता है, और सबसे बलशाली व्यक्ति भी आपको टच नहीं कर सकता अगर वो आप उनका सहारा लेते हो। तो इतने छोटे से प्रहलाद जी विष्णु का सहारा लिया था, इसलिए इतने भयंकर पिताजी जो थे राक्षस उससे भी वो डरे नहीं बिल्कुल। फिर हिरण्यकश्यपु ने जो तलवार उठाई उसके पहले बोला कि मैं भी देखता हूँ किधर है तुम्हारे भगवान। उसने कहा वो तो सब जगह समाये हुए हैं, वो क्रोध से सवाल पूछ रहा है हाँ तमोगुण में, और इस सत्वगुण में शांत जवाब दे रहे हैं, वो तो कण कण में व्याप्त है, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है। बोले वो सब जगह छाप्त है, कण कण में समाये हुए हैं। ये तो देखा इस खंभे में है, हाँ इधर भी है, कण कण तो उधर भी है, तो सब कण में वो है उधर भी है, देखता हूँ अभी क्या कैसे तुम्हारा भगवान तुम्हें बचाता है। तो एक मुट्ठी मार ली उसके ऊपर तो वो पूरा जो खंभा था वो पूरा भंग हो गया, पूरा मिट्टी मिट्टी हो गई उसके अंदर, और ऐसी भयंकर गर्जना हो गई उस समय, इतनी भयंकर गर्जना हो गई कि पूरा ब्रह्मा लोक तो सब देवता कांप उठे, लगता है प्रलय काल आ गया, बेसमय का प्रलय काल आ गया, अभी तो नष्ट हो गए सब लोग। इतना भयंकर गर्जना हुई, उसके अंदर से भयंकर जीव बाहर निकला, आधा सिंह और आधा मनुष्य, आठ हाथ और तलवार जैसे लाल लाल चमकने वाली जीभ जो है आगे पीछे डोल रही है, आंख में जैसे अंगार हो ऐसी आंखें, भवें उसकी खड़ी एकदम गुस्से से, कान एकदम खड़े जैसे कि सिंह को गुस्सा आता है ना सिंह, तो कान एकदम खड़े हो जाते हैं क्रोध से, उसको देख नहीं सकते आप, ऐसा भयंकर दृश्य था। वो गर्जना करते हुए जब आए तो एक क्षण के लिए हिरण्यकश्यप पीछे हट गया, अरे ये कौन जीव है, इसका तो मैंने वरदान नहीं मांगा था ये मेरे लिस्ट के बाहर का आदमी है ये, हाँ आधा सिंह आधा, ये तो ब्रह्मा जी के निर्माण जो 84 लक्ष योनियां है उसके अंदर नहीं आता है कोई। तो फिर बहुत भयंकर युद्ध हुआ उनके अंदर, हिरण्यकश्यप में अहंकार था कि मैं तो इसको भी मार दूंगा, अवकाश में युद्ध हुआ उनका। और इतना युद्ध होने के बाद में बहुत देर तक युद्ध हुआ, दोपहर के समय नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था, शाम तक युद्ध खेलते रहे वो। ऐसा कहते हैं ना, ऐसा वर्णन दिया है कि बिल्ली का बच्चा जब छोटी सी गेंद से कैसे खेलता है, यहाँ से वहाँ लात मारता है, इधर से भागता है, इधर भागता है, खिलाता है, मतलब कभी कभी चूहे के पिल्ले को भी ऐसे थोड़ा सा काटते हैं फिर छोड़ देते हैं फिर पीछे पाते फिर काटते हैं, बहुत देर तक खेल करते बाद में फिर उसको खाते, वैसे ही कुछ भगवान ने हिरण्यकश्यप के साथ में व्यवहार किया। और जब संध्या का समय आया तो भगवान ने उसको उठाया और घर की दहलीज पे गए वो, और अपने पैर को एक पैर मोड़ लिया, दूसरा पैर उसके ऊपर रखा और अपने शरीर के अंदर एक आसन बना लिया और उस पर उसको रखा, और अपने नाखून से बहुत सारे शस्त्र लेके आए थे वो, आठ हाथ में बहुत शस्त्र थे, दो हाथ शस्त्र नहीं थे, छह हाथ में शस्त्र थे, दो हाथों के नाखून से पूरा पेट फाड़ दिया उसका, वो पूरी आंतें उसकी निकाल कर गले में माला की तरह पहन ली, उसके बाद में पूरा उसका हृदय जो है वो तोड़ दिया और गेंद की तरह फेंक दिया दूर। इतना भगवान को क्रोध था कि मेरे भक्त को इतना कष्ट दिया उसने, जोर जोर से गुर्रा रहे थे वो, और इन्हें किसी भी को टुकड़े टुकड़े कर दिए पूरे और फेंक दिया उनको नीचे, मतलब कैसे, दिन में नहीं रात में नहीं, जमीन पर नहीं आकाश में नहीं पानी में नहीं बीच में ही, और किस शस्त्र से नहीं अस्त्र से नहीं, हाँ और मानव से नहीं या जानवर से नहीं, आधा सिंह आधा लायन आधा मनुष्य, सारी ब्रह्मा जी की कंडीशन को पूरा करते हुए उन्होंने हिरण्यकशिपु को मार दिया। और फिर हिरण्यकशिपु के बहुत सारे सैनिक थे वो सब टूट पड़े भगवान के ऊपर एक ही साथ। भगवान ने बहुत देर तक युद्ध करके सबको समाप्त कर दिया। पूरा हिरण्यकशिपु का दरबार था ना, वो पूरा सैनिकों से, मरे हुए सैनिकों के हाथ टूटे हुए तलवार सबसे भर गया पूरा। फिर भी वो गुर्रा रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, इतना क्रोध था उनके ऊपर। सब देवता लोग पहले डर डर के देख रहे थे युद्ध क्या हो रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। हमेशा देवताओं का ऐसा एकदम हालत खराब होती है, पता नहीं क्या हो रहा है अभी। इतने भयंकर राक्षस के सामने भगवान युद्ध कर रहे हैं, कभी लगता है हार रहे हैं, कभी लगता है जीत रहे हैं। भगवान उनकी भावनाओं को आगे पीछे करने के लिए कभी हारते हुए नजर आते हैं, कभी जीतते हुए नजर आते हैं। हाँ, तो उसके बाद भी भगवान घुर्रा रहे हैं। तभी सब लोग सोच रहे हैं कैसे शांत किया जाए उनको। तो ब्रह्मा जी के सब देखने लगे, ब्रह्मा जी हर समय जब समस्या होती है तो हम आपके पास आते हैं, अभी कुछ करो। बोले मैं नहीं कुछ कर सकता, मुझे भी डर लग रहा है। ब्रह्मा जी कुछ करो, आप हमारे नेता हैं, भगवान जी इतने क्रोध में हैं, कुछ करो। तो ब्रह्मा जी लक्ष्मी की ओर देखते हैं, ये उनकी पत्नी है, हाँ पत्नी का सब मानते हैं, है ना, किसी को संकोच है बोलने में इसमें। उनको लगा कि लक्ष्मी जी जो उनके चरणों की सेवा करती है उनकी बात जरूर मानेंगे। तो लक्ष्मी जी के पास सब देवता गए, बोले माता जी कृपा करके इनको शांत करना। तो वो कहते हैं मैं इनको पहचानती नहीं हूँ, घर में ऐसे रहते नहीं कभी, ये अलग मूड में आज। मैं नहीं जानती इनको, मुझमें हिम्मत नहीं हो रही है। तो सब लोग हार गए, देवता हार गए, पत्नी हार गई, अभी क्या करना है। तो सबकी नजर गई प्रहलाद के ऊपर। तो इतने बड़े बड़े देवता खड़े हैं, हाँ तो ब्रह्मांड का नियंत्रण करते हैं, बड़े बड़े मैनेजर्स हैं, सभी हाई लेवल हाई टेक, वो सब जाके बच्चों का आश्रय ग्रहण करते हैं बच्चे का। तो प्रहलाद अभी तुम्हारे हाथ में है, और बिल्कुल निर्भय होकर हाथ में माला लेकर पुजाते भगवान को माला पहनाते हैं, जिसके सामने जाने से देवता भी डर रहे थे, जाके आराम से माला पहनाते हैं। उसको देखते भगवान का क्रोध शांत हो जाता है। तो जैसे सिंह होता ना, सिंह अपने बच्चे को कैसे प्रेम करता है, चाटते हैं प्रेम से, हाँ वैसे भगवान ने तुरंत उसको गोद में लेकर उसको सिंह के बालक की तरह चाटना शुरू कर दिया और अपना प्रेम व्यक्त किया। तब जाकर सारे लक्ष्मी ब्रह्मा जी सब देवता गए और प्रार्थना किया और पूजन किया, सबकी हिम्मत हुई कि अभी हम पूजन कर सकते हैं। हाँ देखो कितना भक्ति का प्रभाव है, भक्ति होने से आदमी निर्भय हो जाता है। तो ब्रह्मा जी देवता के अंदर उतनी शक्ति नहीं जितनी भक्ति शक्ति भगवान के भक्त में होती है। फिर भगवान ने हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर भगवान बैठ गए, फिर वहां पर गोद में प्रहलाद को बिठाया, फिर देवताओं ने उनका पूजन किया। उसके बाद में भगवान प्रहलाद जी को लेकर यहां पर आए। यहां पर इस कथा का कनेक्शन है, यहां पर वो आए, यहां पर अभी आगे देखेंगे ना, आपको नदी दिखाई पड़ेगी आगे, मंदाकिनी नदी। यहां पर आकर जो अपने खून से लथपथ, हिरण्यकशिपु के खून से लथपथ जो उनके हाथ थे, जिससे उन्होंने नाखून से उनका पेट फाड़ कर हाथों को पहना था, वो हाथ में खून लगा था पूरा, वो आकर भगवान ने इस नदी में धोया यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर विश्राम किया उन्होंने। तो ये उनकी विश्राम स्थली है। तो जब वो यहाँ पर आए तो उनके पीछे पीछे ब्रह्मा जी इंद्र वायु वरुण सोम चंद्र सब लोग आ गए। तो जैसे ही वो आए तो उनके जो थे ना इंजीनियर, हाँ क्या कहते हैं उसको, आर्किटेक्ट, कौन है आर्किटेक्ट, विश्वकर्मा, देवताओं के विश्वकर्मा, दानवों के कौन है, मैं दानव, अपने अपने ऑफिस सबके होते हैं ना। तो वैसे वो जैसे ये आ गए देवता लोग तो सभी उनके पीछे विश्वकर्मा भी आ गए, और विश्वकर्मा ने इसी एरिया में पहाड़ के ऊपर सभी देवताओं के महल बना दिए, उनको रहने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी। और यहाँ पर भी नरसिंह भगवान रहे और सभी देवताओं ने यहाँ पर अपना निवास बनाया, इसलिए उसका नाम पड़ा है देवपल्ली। सभी देवता देव यहाँ पर निवास धारण किए, तो उन्होंने यहाँ पर रहकर कई साल तक नरसिंह भगवान की पूजन अर्चन और सेवा किया, उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया। तो ये जगह बहुत पवित्र है। हाँ उधर एक जगह है सिंगाचलम, कोई कितने लोग गए आप में से वहाँ पर, विशाखापट्टनम में है सिंगाचलम, वहाँ पर एक्चुअली वो हिरण्यकशिपु का वध हुआ था, वहाँ पर वो उसका दरबार था, प्रहलाद जी का स्कूल भी वहीं पर था, वहाँ पर उसको मारा उन्होंने, तो बहुत भयंकर क्रोध में थे। यहाँ पर आए किस मूड में आए, शांत मूड में आए। गौरांग महाप्रभु का जो मूड है औदार्य, वही मूड यहाँ पर नरसिंह भगवान धारण करते हैं। जिस धाम का जो भाव होता है उस धाम में आप किसी भी भगवान के अवतार को स्थापित करेंगे मूर्ति के रूप में, तो उनका भाव अगर उल्टा भी होगा तो भी वो उसी भाव को स्वीकार करते हैं। तो राधा माधव कृष्ण भगवान वृंदावन के हैं, लेकिन जब वो यहाँ पर स्थापन होते हैं तो भी उदार भाव में आते हैं। सब लोग यहाँ पर कृपा करने के लिए खड़े हैं, इसलिए आप कृपा की याचना करना। जब दीप अर्पण करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो उनको प्रार्थना करके हमको निर्भय बना दीजिए। आदमी को भय कब होता है? जब उसको किस वस्तु पर आसक्ति होती है, जिस पर मन लगा हुआ है, जो अटैच हो गए हैं, वो वस्तु मुझसे जाएगी निकल के, इससे आदमी भयभीत होता है। भय की सिंपल व्याख्या है, भय तब होता है जब आसक्ति होती है। आसक्ति भौतिक वस्तुओं से जब होती है तो आदमी भयभीत होता है। समझो आपके जेब में, अभी समझो मिस्टर बख्शी की जेब में समझो 1,00,000 रुपए होंगे, तो थोड़ा भयभीत होंगे वो, कोई जेब कटाएगा, कुछ करेगा। लेकिन समझो कोई फकीर होगा, उसके आदमी जेब में कुछ पैसा ही नहीं है, तो आराम से घूमेगा। उसी तरह से हमें नरसिंह भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे अनासक्त होकर विषयों से, भगवान से आसक्त होकर नरसिंह भगवान की कृपा से प्रहलाद जी निर्भय हो गए थे, जिसको पूरी दुनिया देखकर कांप रही थी उससे भी नहीं डरे वो, मृत्यु से भी नहीं डरे वो। मैं कहा विष पियो तो पी लिया उसने, पहाड़ से फिंकवा दिया अपने आप को, बिल्कुल डरे नहीं, कभी भी नहीं डरे। शांत होकर आराम से भगवान के नाम का भजन करें, यहाँ तक कि भगवान कह रहे हैं माफी चाहता हूँ आपसे, आपके मेरी वजह से आपको कितना कष्ट हुआ, मेरी भक्ति की वजह से आपको पिता ने इतना कष्ट दिया, आपने सहन कर लिया। वो कहते हैं मुझे कष्ट हुआ ही नहीं, मैं तो आपका नाम जपता रहा, पता नहीं मुझे विष का परिणाम ही नहीं हुआ, पता नहीं हाथी के पैर नीचे के दिया गया तो हाथी ने पैर ही नहीं चलाया मुझके ऊपर, सांप के पेट में भेज दिया मुझे तो सांप ने काटा ही नहीं मुझे, क्योंकि सब जगह पर परमात्मा के रूप में अंदर घुसकर भगवान उनको प्रेरणा दे रहे थे मत करो, ना हाथी ने पैर दिया, ना सांप ने काटा, ना विष ने अपना प्रभाव दिखाया, पहाड़ से फेंका तो भगवान ने आग पर हाथ में उसको झेल लिया गद्दे की तरह नरम नरम। और सभी समय पर प्रहलाद जी भगवान के नाम के चिंतन में मग्न हो रहे थे। हमें वो चाहिए, वो दान हमको चाहिए भगवान से, उसकी याचना करना, हमें निर्भय बनाकर आपके चरणों की भक्ति देना, आपके चरणों की भक्ति पाकर हम निर्भय हो जाएंगे तो मृत्यु भी हमको छू नहीं सकती। मृत्यु और मृत्यु के देवता जो है ऐसे लोगों से डरते हैं, उनके पास वो स्वयं और उनके दूत भी नहीं आ सकते जो भगवान का नाम लेता है। इसलिए हम आपको यहाँ पर लेके आए, यहाँ पर भगवान के नाम का दान मिलता है, हरिनाम संकीर्तन का दान मिलता है, वो आप मांगिए। एक बार आपने हरिनाम संकीर्तन का, भगवान के नाम का, जप का विधि विधान स्वीकार कर लिया, यमदूत आपको छू नहीं सकते, यमराज आपको छू नहीं सकते, केवल विष्णु दूत आकर आपको भगवान के धाम में लेके जाएंगे। इसलिए जिन लोगों के पास में माला नहीं है, कुछ लोग देख रहा हूँ माला नहीं है, आप लोग माला लीजिए, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा माला और झोली हम लेके आए हैं। इस धाम में बिना माला के रहना मतलब दुर्भाग्य की बात है, इसलिए आप लोग, हमारी मैनेजमेंट टीम इतनी अच्छी है, उन्होंने, उनका कैसा है ना, स्पिरिचुअल मैनेजमेंट है ना, इसलिए माला झोली लेकर आए हैं, दीपदान का किट भी लेकर आए हैं, वो जानते हैं यहाँ पर क्या जरूरत है और क्या देना चाहिए। वो लेकर आए हैं और आज का फर्स्ट डे है, कल के दिन मेरी विनती है सब लोग माला लीजिए और बस में चलते हुए, उठते हुए, बोट तक पहुँचते हुए, बोट से वापस आते हुए, प्रसाद के लिए जाते हुए, सब समय भगवान के नाम जपते रहना माला के ऊपर। यही इस जगह की देन है आपके लिए, भेंट वस्तु है, सबसे बड़ी कृपा हुई है। हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम, कलौ नस्त्यैव 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 गतिर अन्यथा, और कोई गति नहीं है। और कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजयत, इतने बड़े भयंकर कलयुग के दोष के स्थिति में भी हम लोग भगवान के नाम का सहारा लेके अपने आप को मुक्त करा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच।